पृष्ठ संख्या 90। गांधी के इन लेखों का उत्तर देते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं कोई प्रचार का भूखा नहीं हूँ, किंतु जब महात्मा खुद ही मेरे विरोध में खड़े हो गए तो जवाब देना जरूरी है। मेरे कुछ मुद्दों को महात्मा भूल गए। एक, जाति ने हिंदुओं को बर्बाद किया है। दो, वर्णाश्रम के आधार पर हिंदुत्व के पुनर्गठन की सोच वैसे ही है जैसे टूटे बर्तन में पानी रखना या नाक के बल दौड़ना। तीन, चातुर्वर्ण के आधार पर समाज को पुनः संगठित करने की बात सोचने के मायने हैं, कुछ लोगों को नीच बनाकर रखना। चार, हिंदू समाज धर्म पर ही संगठित हो जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा हो। पांच, इस लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को धार्मिक आधार देना बंद करना होगा। छह, वर्ण जाति का धार्मिक आधार तभी खत्म होगा जब शास्त्रों को महत्व देना कम होगा। अंबेडकर ने कहा कि कभी ऋषियों ने जाति पर हमला नहीं बोला। ज्ञानदेव को भी ब्राह्मण बनने की ही लालसा थी। एक नाथ को अछूतों से प्रेम था। इसीलिए धर्माचार्यों ने अपनी पांत से उन्हें अलग कर दिया। उन्होंने कभी सभी मनुष्यों को एक नहीं कहा, अपितु ईश्वर की दृष्टि में सभी एक हैं। केवल संत महात्मा जाति से अलग हो सकते हैं, किंतु आम आदमी नहीं हो सकता। महात्माओं की प्रेरणा और अनुभूति को आधार मानकर उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना केवल तर्क तथा तार्किक स्पष्टीकरण हो सकता है। जाति वर्ण पर आधारित समाज गलत संबंधों को जन्म देता है। उन्होंने गांधी जी को चेताया कि वे स्वयं वर्णाश्रम को नहीं मानते, इसे मानने का दावा करते हैं और कहते हैं वह विगत 50 वर्षों से इसी आधार पर चल रहे हैं। लेकिन उनके पुरखे एक राज्य में दीवान थे। यह तो ब्राह्मणों का काम था, बनियों का नहीं। उन्होंने स्वयं कानूनी पेशा अपनाया। उसे भी छोड़कर अब वे आधा संत और आधा राजनेता हैं। उनके छोटे पुत्र ने बनिया के यहाँ नहीं, ब्राह्मण के यहाँ शादी की है। उन्होंने उसकी निंदा नहीं की। मेरे अनुसार अपने पुरखों के आदर्शों को ही अपनाए रहना न केवल असंभव तथा अव्यवहारिक है, अपितु नैतिक रूप से भी बचाव योग्य आदर्श नहीं है। कोई ब्राह्मण परस्पर विरोधी दिखने वाले देवता का पुजारी हो सकता है, और यदि इसे परंपरागत पेशा मानकर चला जाए तो वह व्यक्ति बौद्धिक संपदा का दिवालिया पुरुष है। बिना विश्वास और निष्ठा के परंपरागत पेशा को अपनाए रखना मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप नहीं है, अपितु अच्छे व्यवसाय का वैश्यकरण है। बहुत पहले महात्मा ने यंग इंडिया में जाति और वर्ग पर लिखते हुए कहा था कि जाति सामाजिक स्थायित्व है, यह वर्ग व्यवस्था से बेहतर है। तब तो वर्ण जो परंपरागत पेशे को कहता है उसे छोड़कर सामाजिक स्थायित्व पर ही आना चाहिए। हर व्यक्ति स्थिरता चाहता है, किंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि वह एक ही चीज से चिपका रहे। सभी परिवर्तन चाहते हैं, सभी को अपना ठिकाना चाहिए, पर सामाजिक न्याय का बलिदान कर नहीं। लचक और एकता का विनाश कर ठिकाना नहीं चाहिए। एक समय था जब महात्मा रोम रोम से सनातनी हिंदू थे। वे अवतार पुनर्जन्म में यकीन रखते थे। हिंदुत्व के नाम पर वेद पुराण उपनिषद में आस्था रखते थे। वे जाति में भी विश्वास रखते थे और एक अंधविश्वासी की तरह इसके समर्थक थे। उन्होंने अंतरजातीय विवाह, भोजन, पानी पीने का विरोध किया था, किंतु अब उन्होंने इसे त्याग दिया और कहा, कि जाति राष्ट्रीय व आध्यात्मिक तरक्की में बाधक है। एक अंबेडकर सोर्स बुक एक कॉमा पृष्ठ संख्या 88। पृष्ठ संख्या 91। शायद अब पुत्र द्वारा विजातीय विवाह करने के बाद उनके विचार बदले हों। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित महात्मा ने अपनी कुछ राय बदली है। दयानंद के जन्मना जाति को इनकार किया। वर्ण में उसके गुण के आधार पर कर्म है, जबकि जाति में जन्म के आधार पर ही कर्म है, ऐसा महात्मा का विचार है। अंबेडकर के शब्दों में इस प्रश्न पर महात्मा भ्रमित हैं। वे सत्य का निरूपण करने में विफल हैं। उनमें अंतर्निहित राजनेता का कर्म उनके संत के कार्य में बाधक है। प्रथमतः उनकी मनोदशा महात्मा की है, उसमें बचपन की सादगी और निर्दोष भावना है। बच्चों की तरह जिन चीजों में विश्वास करना चाहते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हमें उन दिनों तक इंतजार करना है जैसे उन्होंने जाति की व्यवस्था पर विश्वास करना छोड़ दिया। वैसे ही धीरे धीरे वर्ण की भी व्यवस्था को अस्वीकार कर देंगे। वे महात्मा रूप में राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं। वे इसमें समर्थ हों या न हों, किंतु राजनीति ने सचमुच उनका व्यवसायीकरण कर दिया है। एक राजनेता को जानना चाहिए कि समाज संपूर्ण सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए उसे पूरा सच नहीं कहना चाहिए। यदि वह पूरा सच बोलता है तो यह उसकी राजनीति के लिए घातक है। इसीलिए महात्मा जी हमेशा जाति और वर्ग की वकालत करते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि राजनीति में उनका आधार खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी हो, जाति को वर्ण के नाम से प्रचारित कर वे अपने आप को और जनता को धोखा दे रहे हैं। महात्मा ने मुझे मेरे हिंदू धर्म को नापने की तुला को चुनौती दी है, लेकिन मेरे अनुसार व्यक्ति और उसके धर्म की कसौटी उसके वे सामाजिक आधार हैं जिनके मूल में कुछ सामाजिक चलन होते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसे समाज में नहीं रहना चाहिए जो गलत आदर्शों की दुहाई दे, या ऐसा समाज जो अच्छे आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश न करने दे। मेरे राय में वे गलत आदर्शों और गलत सामाजिक जीवन पर चल रहे हैं। हिंदू समाज को नैतिक पुनर्जन्म की आवश्यकता है। इसे वे लोग खतरनाक ढंग से सीमित कर रहे हैं। इसका पुनर्निर्धारण कौन करे? निश्चित रूप से वे जो अपनी वैदिक निष्ठा को साहसिक ढंग से कह रहे हैं। हिंदू नेतृत्व में अभी बौद्धिक पुनर्जागरण का अभाव है। महात्मा चिंतन में विश्वास करते नजर नहीं आ रहे हैं। वे प्राचीन बातों को आदरपूर्वक शिरोधार्य कर लेते हैं, केवल इस डर से कि यदि नई चीज चिंतन से निकाले तो वहीं सब कुछ डूब न जाए। इसीलिए हमें उनसे सहानुभूति है। हर स्वतंत्र चिंतन में स्थिर दुनिया को संकट में डालने की शक्ति होती है। संतों पर निर्भरता हमें सच्चाई के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। संत भी तो मनुष्य ही हैं। मुझे सचमुच लगता है कि वे हिंदुओं के मेहराबदार सामाजिक ढांचे को समर्थ करने की दृष्टि से तर्क जुटाने की मंशा से अपने विवेक का वैश्यकरण कर रहे हैं। वे सर्वाधिक प्रभावशाली क्षमा प्रार्थी तत्व हैं, इसीलिए वे हिंदुओं के सबसे खराब दुश्मन हैं। समाज में अनेक ब्राह्मण हैं जो जूता बेचते हैं। यह उनके वर्णाश्रम धर्म के परंपरागत पौरोहित्य कर्म के विपरीत है। वे अंतरजातीय विवाह भी कर रहे हैं। वे अपने धर्मों से वर्णाश्रम को तोड़ रहे हैं, लेकिन धर्म और वर्ण की संस्था के पक्ष में हैं। इसके विरोध में बोलने वालों को प्रताड़ित भी करते हैं। इस बौद्धिक वर्ग की बेईमानी से कैसे इनकार किया जा सकता है? उनके सोच का फल हमारे समाज का अपमानकारक तत्व है। हिंदू दो विश्व में विचरण कर रहे हैं, एक मृत और दूसरा शक्ति सामर्थ्यहीन। पृष्ठ संख्या 92। जिस महात्मा की ओर वे दिशा निर्देश की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका विश्वास चिंतन में नहीं है। इसीलिए वे हिंदुओं को कोई ऐसी दिशा नहीं दे सकते जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर सके। वे बौद्धिक वर्ग जिनकी ओर दिशा निर्देश की उम्मीद है, या तो वे बहुत बेईमान हैं या वे अनासक्त हैं। वे कोई दिशा नहीं दे सकते। हम एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणति देख रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति इतना ही कर सकता है, और कहा जा सकता है कि ऐ हिंदुओं, हमें तुम्हारे नेताओं को लानत भेजनी है। इस तरह गांधी और अंबेडकर के रिश्ते मधुर नहीं बन सके, जिसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर गांधी की नीयत पर भी हमला करते रहे। क्या कोई व्यक्ति यह कभी स्वीकार कर सकता है कि गांधी ने जाति के बंधन ढीले करने के आंदोलन इसीलिए चलाए थे कि उनका कोई पुत्र अंतरजातीय विवाह कर लिया था? उन्होंने निर्विवाद रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत भारतीय समाज की समरसता के लिए की, और इस कार्यक्रम पर वे अंत तक डटे रहे। जब भारत की आज़ादी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, मणिपुरी लोगों ने गांधी जी से शिकायत की कि वे लोग पिछड़े वर्गों में गिने जाते हैं, उनके हितों के बारे में सवर्ण नहीं सोचते। तब गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा, यदि हिंदुत्व को जिंदा रहना है तो इसे जाति विहीन बनाना होगा। वे किसी सीधे बंटवारे के पक्षधर नहीं थे। यदि उच्च वर्गों का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और केवल वैश्य है, तो हिंदू तो निराशाजनक अल्पमत में हो जाएंगे। उनके समक्ष जिंदा रहने के बहुत कम रास्ते रह जाएंगे। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि आज़ादी के तत्काल बाद उच्च जातियां समाप्त होंगी, विषमता बीते दिनों की याद होगी, और तथा कथित पिछड़ी जातियां अपने पुरुषार्थ से आगे आ जाएंगी। दलित जातियों का एक प्रतिनिधि मंडल गांधी जी से मिला और उनसे सलाह किया कि क्या उन्हें अब अपने स्तर को ऊंचा उठाते हुए, विशेष महत्व स्वयं लेते हुए, तथा कथित ऊंची जातियों की कोटि में आ जाना चाहिए, या छुआछूत को जड़ मूल से समाप्त करने के काम में लग जाना चाहिए, जिससे जाति और गैर जाति के नाम का बंटवारा समाप्त हो जाए। गांधी जी ने कहा कि वे स्वाभाविक ढंग से दूसरा रास्ता चुनेंगे। वर्ग और जाति विहीन समाज ही उनका आदर्श है। जब छुआछूत समाप्त हो जाएगी, तो किसी जाति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सभी शुद्ध रूप से हिंदू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हरिजन अपने को विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए लामबंद होंगे, तो इससे वर्ग विद्वेष पैदा होगा, और इस तरह का वर्ग विद्वेष उन्हीं के लिए कष्टकारी होगा। इस तरह के ख्याल एक विभाजन रेखा को तैयार करेंगे। समाज में किसी भी विभाजन रेखा को समाप्त करने के पक्ष में मैं हूँ। मेरी हरिजन बंधुओं को सलाह है कि पहले वे अपने में व्याप्त किसी जाति प्रणाली को समाप्त करें और शुद्धता के नियमों का पालन करें, बजाय इसके कि अपने लिए अलग से विशिष्ट व्यवहार की मांग करने के उन्हें हिंदुत्व के महान सागर में विलीन होने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सवर्ण जातियों से आग्रह किया कि वे जाति विहीन समाज बनाने के लिए उन कार्यों को भी अपने हाथ में ले लें जिसे अभी तक केवल अछूत जातियां किया करती थीं। उन्हें भंगी का काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस काम को निष्ठा और सफाई के साथ करना चाहिए। एक अंबेडकर सोर्स बुक एक कॉमा पृष्ठ संख्या 185। पृष्ठ संख्या 193। सुस्ती और आलस्य के रूप में नहीं। इंग्लैंड में तो अच्छे भंगी प्रसिद्ध इंजीनियर्स होते हैं। मैंने यूरोप में अच्छे लोगों को अच्छी तरह सफाई करते देखा है। वहाँ बेंत की टोकरी लेकर अच्छे अच्छे लोग सफाई के काम में लगे रहते हैं। ऐसा यहाँ भी होने से बड़े और भंगी दोनों की बस्ती अलग-अलग नहीं होगी। दोनों के आवासों में समरूपता होगी। उन्होंने उच्च जाति के हिंदुओं को स्वेच्छा से भंगी बनने की सलाह दी और ऐसा हुआ भी। उनके आंदोलन से जुड़े तमाम ऊंची जाति के लोग सामूहिक सफाई और भंगी का कार्य करते थे। कांग्रेस के अधिवेशनों में और जेल के भीतर शौचालयों की सफाई का कार्य कांग्रेस के बड़े नेता भी करने लगे। इस तरह गांधी जी की सोच थी कि जाति की सबसे बड़ी शक्ति छुआछूत है और इसे कटुता द्वारा नहीं ऊंच जाति के लोगों के दिल बदल कर बिना किसी कड़वाहट और टकराहट के किया जा सकता है। उन्होंने सत्य भविष्यवाणी की कि आजाद भारत में अपनी सरकार जो तरक्की के अवसर प्रदान करेगी उससे पिछड़े दलित अवश्य ऊपर आ जाएंगे, इसीलिए आज़ादी का कार्य प्रमुख है। डॉक्टर अंबेडकर गांधी के प्रति कटुता भाव से इतने भर गए थे कि वे धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की धारा से कटते गए। उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और 1937 के चुनाव में उनके सारे परिश्रम और योगदान के बावजूद महाराष्ट्र को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में उन आरक्षित क्षेत्रों में भी कांग्रेस पार्टी जीत गई और 1946 के चुनाव में तो उनकी पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने बुद्धिमानी का काम किया कि 1946 के बाद की सरकारों में न केवल डॉक्टर अंबेडकर को अपने मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण पद दिया अपितु उन्हें संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया, जिससे सत्ता के प्रतिष्ठान के भीतर रहकर डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के हक में तमाम प्रावधान करने का अवसर प्राप्त हो सका। यदि गांधी और अंबेडकर के रिश्ते प्रारंभ से ही मधुर रहते तो शायद देश की आज़ादी का संग्राम और दलितों के उत्थान के काम में और गहरी तीव्रता दिखाई पड़ती, जो हमारे समाज के लिए आवश्यक था।